आज मैं बात करने चाह रहा हूँ फिटनेस कोच और पार्कोर एथलीट किसले सर से। किसले सर के साथ मेरे को ट्रेन करने का मौका मिला था कई साल पहले, और वो दर्द और पसीना मुझे आज भी याद है। और इतना याद है कि मैंने सर को बकायदा मैसेज किया, मैंने कहा प्लीज आप पॉडकास्ट में आके अपना विजडम और अपना नॉलेज पक्का शेयर करिए, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत सारे लोग बेनिफिट कर सकते हैं सर से सीख के और सर की बातें जान के कि सर क्या क्या नॉलेज रखते हैं अपना। ठीक है, तो वेलकम टू द शो सर।
हाय।
सर, जो लोग आपको नहीं जानते, जो पहली बार आपका नाम सुन रहे हैं, जिनको कम्युनिटी का नहीं पता, उनको आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि आप कौन हो और आप फिटनेस में कैसे आपने स्टार्ट किया?
हाँ, श्योर सर। सो हाय, मैं किशले कुमार हूँ। मैंने फिटनेस अराउंड मैं बचपन से फिटनेस में हूँ। फिटनेस में लाइक क्या जनरल फिटनेस होता है बेसिकली। तो जनरल फिटनेस क्या, जैसे पुशअप्स होता है, रनिंग होता है, तो हम बचपन से ही कर रहे होते हैं। और मेन होता है पेरेंट्स आपको किस तरह से मोटिवेट कर रहा होता है। तो मेरा पेरेंट्स का बैकग्राउंड फिटनेस से ही था। मेरा बैकग्राउंड फिटनेस से है। और मेरा जो फादर हैं, मेरे फादर रेसलर हुआ करते हैं, रेसलर
अरे
थे। उसके थ्रू
वाह,
ही, हाँ, उसके थ्रू ही उसका मीन्स जॉब लगा और इस तरह से वो मूव ऑन की। सो मेन है कि पेरेंट्स आपको किस गाइडलाइन में लेके जा रहे हैं, राइट। मेरा स्टडी भी होता था, फिर साथ साथ फिटनेस से भी जुड़ा होता था। मीन्स बचपन में मुझे ट्रैक सूट पहना के मेरी मोम भेज दिया करती थी कि जाओ रनिंग करके वहां से आओ।
अरे
इस तरह लाइफस्टाइल था। तो इस तरह धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में बताते थे। गुंजन सर मेरा इंस्पिरेशन रहते थे मेरे घर में। सो वो हमारे हमेशा दूसरों के बारे में बताते थे, वो अच्छे अच्छे पर्सन के बारे में, अच्छे पर्सन के साथ जाओ, अच्छे पर्सन से मिलो, अच्छे पर्सन से बात करो, इस तरह के लोगों के साथ आप वर्क करो। इस तरह से बचपन से ही हमें पेरेंट्स का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला।
आप और गुंजन सर मिले कैसे थे यार?
मैं और गुंजन सर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। मेरे वो मामा जी लगते हैं, मेरे मॉम की
ओ
मॉम
माय,
की।
लाइक रियल ब्रदर।
तो और वो मेरा इंस्पिरेशन है। मेंटोर, जो टीचर, आप जो भी कह लो, सब कुछ वो है।
वाह यार, गुंजन सर तो एक्चुअली
तो
सभी के इंस्पिरेशन है।
इस तरह से हमने स्टडी किया, आगे किया। स्टडी बहुत ही जरूरी है। मैंने इंजीनियरिंग किया था 2019 में, बीटेक इंजीनियर चेन्नई से। और फिर उस बीच में मैं स्पोर्ट्स से काफी जुड़ा रहा। लेकिन एक आफ्टर आफ्टर इंजीनियर मुझे कुछ और ही करना था, कुछ डिसाइड। जस्ट स्टडी कर रहा था, स्टडी के तरफ पढ़ाई कर रहा था, नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि जरूरी है नॉलेज। आगे आप अगर आप मूव कर रहे होते तो नॉलेज बहुत ही जरूरी होता है।
एब्सोल्युटली।
सो ये था, इस तरह से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे आगे मूव करता रहा, कुछ ना कुछ करते रहे। बचपन से लेके 10th को क्रॉस किया, इंटरमीडिएट, फिर बीटेक, जैसे जैसे आगे किया। लेकिन मेरा फिटनेस से जो कनेक्शन था ना, वो हमेशा मेंटेन रहा। सुबह मेरा अर्ली मॉर्निंग जगना था, होता था कहीं पे भी। मींस अराउंड इंजीनियरिंग का क्या होता है, थोड़ा सा ऑफ शेड्यूल होता है कि जब आप 4 o'clock सोना होता था इंजीनियरिंग स्टूडेंट का। लेकिन मेरा 10 to 12 o'clock भी अगर हम सो रहे होते हैं तो जल्दी ही जग रहे होते थे। अराउंड 4 to 5 o'clock में जगता था, अपना प्रैक्टिस के लिए जाता था। सो इस तरह से मेरा स्पोर्ट्स से कनेक्शन रहा और इस तरह से आगे बढ़ा। मैं दिल्ली आया, एक दूसरे से मिले और फिर मैं ट्रेनिंग में आ गया, प्रॉपर ट्रेनिंग 2013।
समझ गया सर। आपकी ट्रेनिंग सर, जो आप कह रहे हो ट्रेनिंग, तो एक तो आप गुंजन सर के साथ जो उनकी फिटनेस है आपको कोच और मेंटोर वो करते थे, एक तो ये हुआ। आपका फील्ड ऑफ नॉलेज फिटनेस में किन किन चीजों का? मुझे पता है पार्कोर की प्रैक्टिस करते हो, आई थिंक आपका जिमनास्टिक्स का भी है थोड़ा सा ट्रेनिंग का। आप क्या क्या चीजें सर कराते हो?
तो मेरा बेसिकली पार्कोर होता है, कैलिस्थेनिक्स होता है, मार्शल आर्ट्स होते हैं, योगा होता है, फंक्शनल ट्रेनिंग होता है, बॉडी बॉडी वेट ट्रेनिंग हो रहा होता है। पार्कोर पार्कोर होता है बेसिकली।
जी सर।
सो पार्कोर है ना। सो इसमें क्या है, हम सब ने क्या किया, कोई एक पार्कोर सिर्फ आपके बॉडी को नहीं बना सकता है। सो बॉडी कैसे बनता है वो चीज हम लाते हैं। लाइक पार्कोर से तो आप मूव कर पाओगे, अलग अलग ऑब्स्टिकल्स से एक्सरसाइज कर पाओगे। कैलिस्थेनिक्स आपके अपर बॉडी को कमाल का बनाएगा। अगर लेग्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको मार्शल आर्ट्स किक्स करनी होते हैं, समझ रहे हो। तो हम किसी भी इस तरह से इंफॉर्मेशन में नहीं जाते हैं कि सिर्फ मैं पार्कोर ही सिखाता हूँ या मैं कैलिस्थेनिक्स सिखाता हूँ या मैं योगा सिखाता हूँ, इस तरह को मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं फिटनेस देता हूँ। फिटनेस लाइक आपका जो बॉडी, आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए, वो चीज मुझे देना होगा। लाइक स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी में, तो स्ट्रेंथ के लिए मैं अब यूज करता हूँ कैलिस्थेनिक्स।
कोई टूल है आपके लिए?
कोचिंग अभी बारे रनिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रनिंग एथलेटिक ट्रेनिंग हो रहा होता है। सो ओवरऑल जितने भी फिटनेस एलिमेंट्स बॉडी को चाहिए तो मैं वो दे रहा हूँ।
मैं समझ गया सर, आप एक उसमें नहीं हो, आप एक छोटी सोच पे जी जा रहे हो। आपने कहा इंसान ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, सब सिखाओ उसको।
अपने बॉडी से कैसे खेल रहे हो तो ये चाहिए। किसी को जिम की जरूरत, अगर और मैं कोई भी डंबल और जो भी वेट्स होता है वो चीज का ट्रेनिंग नहीं देता, ओनली बॉडी वेट होता है। कैसे आप ऑब्स्टिकल के साथ खेल सकते हो, राइट? आप घर पे इतना टाइम से घर पे बंद हो, आप घर में कैसे खेल सकते हो, वो तो आपको जरूरी है। आप क्रिएटिव बनो, बस अपने आप को स्टॉप मत कर लो किसी भी इक्विपमेंट्स में।
आप वेट ट्रेनिंग में बिलीव नहीं करते सर क्या? आप वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज में बिलीव नहीं करते क्या सर? आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है ना कि वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। और
हाँ, सो वेट ट्रेनिंग, देखो वेट ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए, अगर हमारे बॉडी को उतना चीज मिल जाता है तो वेट ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर लेग्स का स्ट्रेंथ, वेट ट्रेनिंग किस चीज के लिए, वेट का स्ट्रेंथ ना, अगर सॉरी लेग का स्ट्रेंथनिंग कर रहा होता है, लेग की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपके पास हजारों एलिमेंट्स आपके बॉडी के साथ ही मिल गया है, तो वेट ट्रेनिंग क्यों करें हम, वेट के साथ क्यों खेलें। अपने बॉडी वेट को तो पहले कैरी कर लो अच्छी तरह से, अलग अलग उसको तो मूव करना स्टार्ट करो, देन वेट ट्रेनिंग। अलग वेट ट्रेनिंग भी अगर करना है तो फंक्शनल ज्यादा होना चाहिए, वेट के साथ आप फंक्शनल बनिए। अगर हाँ तो फंक्शनल बन रहे हो तो वो बहुत ही जरूरी, मूव करना, क्योंकि लाइफ में तो हमें मूव करना है।
यस सर, सर फंक्शनल से आपका क्या मतलब है? मतलब जैसे मैं जब फंक्शनल सुनता हूँ तो सुना मैंने बहुत है, कई लोग फंक्शनल कहते हैं, इसका मतलब क्या एग्जैक्टली सर?
राइट, फंक्शनल क्या है, जैसे एनिमल मूव आगे मूव कर रहे होते हैं, अलग अलग ट्विस्टिंग हो रहा है। फंक्शनल अभी का जो मैं बता रहा हूँ, कोई TRX यूज कर रहा है या सॉरी रबर बैंड यूज कर रहा है, रबर या कुछ भी इक्विपमेंट, वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है, इस तरह का होता है, तो फंक्शनल वो मैं नहीं। सबका अलग अलग थॉट्स होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है, बस ये है। लेकिन मेरा फंक्शनल का क्या है, मतलब क्या है, अपने बॉडी को किस डायरेक्शन में, कितना आप मूव कर रहे हो, स्टेप्स पे क्लाइंब करना, स्टेप्स पे आप चल रहे होते, ये भी फंक्शनल है। लैडर को क्लाइंब कर रहे होते हो, ये भी फंक्शनल है। किसी भी वॉल को क्लाइंब कर रहे होते, अलग अलग डायरेक्शन वॉल पे आप खेल रहे होते, वो भी फंक्शनल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसल ग्रुप यूज हो रहा होता है। सिर्फ आप ये कोई भी चीज आप लिफ्ट कर रहे हो, उसमें सिर्फ एक मसल ग्रुप ही यूज हो रहा होता है, और आप एक एक्सरसाइज से कितने मसल ग्रुप को आप यूज कर रहे होते हैं, ये फंक्शनल।
मैं समझ गया, तो आप कह रहे हो कि अपनी बॉडी का पूरा इस्तेमाल करो, और आप डे टू डे लाइफ में जो आप चीजें करते हो आप उसमें इंसान की बॉडी को और ताकतवर कर रहे हो एक तरीके से।
राइट राइट,
मैं समझता हूँ सर। सर एक चीज बताइए, देखिए आपका जो फंडा है ना फिटनेस का, काफी जैसे कहते हैं ना काफी खुला है, काफी ब्रॉड है, इसमें बहुत सारी चीजें है। तो अगर दो तीन लोग आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि इसलिए सर आप प्लीज हमको ट्रेन कर दो, कोई इंजरी विंजरी नहीं है, बस 20-21 साल के लड़के, वो आते कहते किसलिए सर प्लीज हमको आज ट्रेन कर दो, तो आप यूजुअली पहले दिन लोगों को ट्रेनिंग के नाम पे क्या कराते हो, आपकी यार ये करो ये करो ये करो, आप क्या पसंद करते हो फर्स्ट डे?
सो सबका देखो फर्स्ट डे असेसमेंट होता है, असेसमेंट में जनरल हम फिटनेस देखते हैं कि लोग पुशअप्स कर पाता है, पुशअप्स कर पाता है, पुलअप्स कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो उस बेसिक लेवल पे लेके जाते हैं। बेस क्या है, पुलअप पुशअप स्क्वाट, समझ लो।
जी जी,
पुलअप पुशअप स्क्वाट अगर हमें कराना है, मींस जनरल मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग नहीं, जस्ट बता रहा हूँ। पुलअप पुशअप स्क्वाट अगर हमें कराना है, पुलअप्स जस्ट पुशअप्स करते करते हमें पुशअप्स नहीं आता है, या पुलअप्स जस्ट पुलअप्स हैंगिंग बार पे जाते हैं, और पुल पुल कर रहे होते हैं, नहीं आएगा जल्दी, नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा ही एक टाइम में, बहुत एक गैप लेगा, आएगा ही। सो ये तो उस अगर उसके साथ हम वेरिएशन कर रहे होते हैं, लाइक क्लाइंब कर किसी चीज को क्लाइंब किया और वॉक कर रहे होते हैं, अलग अलग मसल ग्रुप, जस्ट शोल्डर की स्ट्रेंथ लेवल को बढ़ा देना, बस आगे बढ़ा देना। फर्स्ट डे हमारे पास कोई आया, मैं उसको देखूंगा कि एन जो हमारा जो ये होता है फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एनिमल फ्लो होता है, हैंड्स और लेग से मूव करना फॉर बेटर ड्रिल्स,
मंकी वॉकिंग जो होती है सर, जो हाथ पैरों में चलते हैं।
आप कभी देखे हो कि एनिमल को डायबिटीज हो गया है?
आज तक तो सुना नहीं सर।
पैर में इंजरी, जंप किया और पैर में इंजरी हो गया है?
नहीं सर,
ऐसे नहीं सुना। तो उस तरह का हमने फॉर्मूला अपनाया है,
जानवरों से आप सीख रहे हो, मतलब सर जानवरों का आप फिटनेस लेते हो?
हाँ राइट, इस तरह से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं मंकी ट्रैवल अलग अलग तरह से। सो उससे क्या होता है, हमारे पूरा बॉडी वेट, बॉडी मसल्स मोबिलाइज हो रहा होता है, स्ट्रेंथनिंग हो रहा होता है
जी,
फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो रही होती है, हर एक चीज आ रहा होता है, एजिलिटी आ रहा होता है बॉडी मूव करने में, रनिंग आप कर रहे होते हो, भाग रहे होते हो, क्रॉल ड्रिल कर रहे होते हो, इस तरह का फिटनेस लेवल।
मैं समझ गया सर, मतलब आप आदमी को हर एंगल और हर तरीके से उसको ट्रेन करते हो, बिल्कुल जैसे सुपर सुपर पावर देते हो उसको एक तरीके से मूवमेंट की।
हाँ अलग अलग अपने अपने लेवल पे लोग आगे मूव कर रहे होते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करते हो, जितना आप डेडिकेटेड होते हो, उतना आप मूव कर रहे होते हो।
समझ गया सर,
बहुत ही जरूरी है, आपको क्या चाहिए वो बहुत ही जरूरी है।
जी जी जी,
सो ये है।
किसने सर, जब आप किसी को, आई थिंक आपको तो कई साल हो चुके ट्रेनिंग कराते कराते लोगों को, तो एक तो अपनी ट्रेनिंग तो आप करते ही हो, बट यू ऑल्सो ट्रेन अदर पीपल। सर अपना पर्सनली आपका फिटनेस और हेल्थ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है, जो आपको ओवरकम करने में खूब मेहनत लगी हो, वेदर वो एक फिटनेस का चैलेंज था या कोई?
मैं बताता हूँ, मैं जस्ट काम करता हूँ, अपना बेस्ट वर्क कर रहा होता हूँ हमेशा, हर एक दिन मुझे कभी भी, सीरियसली मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझसे पूछते हो ना आपको चैलेंज किस दिन, मुझे हर एक दिन अच्छा लग रहा होता है, चैलेंज के तौर पे मुझे लगता है, मैं फन करता हूँ ऐसे ही, मैं ट्रेनिंग में फन कर रहा हूँ तो अपनी ट्रेनिंग में फन करता हूँ, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। और मैं दूसरों को जो भी ट्रेन कर रहा होता हूँ उसमें मजा आता है मुझे, ट्रेन करने में, किसी को भी ट्रेन देने में, मुझे कुछ भी आगे पीछे नहीं दिख रहा होता है या क्या हो रहा है, मुझे जस्ट दिखता है कि कैसे इनका जो नेक्स्ट लेवल पे ये कैसे जाएंगे।
जी सर,
मुझे कभी भी किसी भी चीज में चैलेंज नहीं लगा है अभी तक, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में और खुद का ट्रेनिंग में।
ये सर, ये तो बड़ी पॉजिटिव सोच है आपकी, ज्यादातर लोग ऐसे नहीं सोच पाते वैसे।
हाँ जनरली मैं ऐसे ही सोचता हूँ, ऐसे मुझे अभी तक जो 6 ईयर मेरा जस्ट ट्रेनिंग में हो गया है, ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ पीपल को, और उसके पहले मैं कितना साल खुद को ट्रेन किया अलग 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 लेवल पे, कहीं भी जो जो जैसे जैसे नॉलेज आता गया मैं अपने आप को ट्रेन करता गया।
किस्टर सर, आपको कोई कैसे कभी क्लाइंट्स मिले, ऐसे कोई स्टूडेंट्स मिले जिनको ट्रेन करना आपको सही में चैलेंज लगाओ? एक तो होता है ना कि किसी का शरीर इतना कमजोर है कि उसको ट्रेन करने में आप सर खुजा दी कि मतलब ये आदमी ऐसी एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा है, ऐसा कोई क्लाइंट है आपके पास, स्टूडेंट बहुत इतना इतना हाथ कमजोर आपके आंसू निकल गए मतलब?
नहीं ऐसा नहीं मिला, लेकिन जितना चैलेंज, जैसा मैं सीरियसली बताता हूँ, ये बिलीव आपको करना होगा या मैं बिलीव करता हूँ इसमें
जी,
मैं 4 ईयर से स्टार्ट करता हूँ, 4 ईयर के बच्चे से, समझ रहे हो, 4 ईयर के बच्चे से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक आई बच्चे, एक क्लाइंट आया 2 साल की, 2 साल कुछ महीने, 1-2 महीने हुआ होगा, 2 साल कि सर मेरा ट्रेनिंग देख करके कि ट्रेनिंग में दे रहा होगा तो चाहिए, मीन्स वो बहुत ज्यादा ये होगा कि सर मेरे प्लीज बच्ची को आप सिखाओ इस तरह से, काफी सारा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होने आने लगा। तो मैं बोला कि जस्ट आओ, लेके आओ, मैं जस्ट ट्रेन नहीं करूँगा, जस्ट लेके आओ, जस्ट देखना है मुझे पहले। उसके साथ मैं खेलना स्टार्ट किया और वो इतना डेडिकेटेड होके वो मेरे साथ खेलना स्टार्ट किया, मुझे मैं उससे मोटिवेट हो गया, इंस्पायर हो गया, समझ रहे हो। तो मुझे कभी किसी भी चीज में चैलेंज नहीं लगा, मुझे लगा कि हाँ देखता हूँ, जस्ट देखता हूँ, समझ रहे हो। और मैं उसके साथ खेलना स्टार्ट किया और मैं बहुत ही फन किया और वो भी बच्ची बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई, बहुत फन करना स्टार्ट किया। तो इस चीज होता है। ट्रेनिंग में मुझे कभी भी चैलेंज नहीं लगता है, मैं जस्ट अपना वर्क करता हूँ बेस्ट। अगर अपना वर्क बेस्ट करोगे, बेस्ट वर्क करोगे तो आप आगे मूव करेंगे, चैलेंज के बारे में सोचेंगे ही नहीं। हाँ, तो इस तरह से फेज आता रहा। काफी अलग अलग क्लाइंट्स आते हैं, जिस आप समझ लो कोई बच्चा ऐसा आया है जो कि कभी सुनाई नहीं देता था, वो घर पे रहते थे और उसको मिस ईयर से कोई कुछ इशू हो गया, क्योंकि वो 4 साल तक बाहर गया ही नहीं, बाहर का आवाज सुना ही नहीं, गार्डन कभी गया ही नहीं, हैंड रखने में इशू हो रहा था। जब उसके साथ खेलना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे वो बहुत आज के लेवल की वो क्या से क्या नहीं करता है, वो बच्चा 7 ईयर 8 ईयर इस तरह 4 ईयर से मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर 59 ईयर्स को मैं क्लास दे रहा होता हूँ। काफ़ी सारे इस ड्यूरेशन में क्लाइंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, तो मुझे मजा आता है इस ट्रेनिंग में। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस तरह से कुछ लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है।
हर चीज को एंजॉय करके लेते हो, मतलब आप अपने काम को बिल्कुल जैसे होता है कि जितना आप पैशनेट होके करते हो आप उतना पैशन में करते हो उस काम को।
राइट,
समझ रहा हूँ सर। सर आप अभी तक, मुझे पता है कि वॉलीबॉल का समझ चुका हूँ इसका जवाब क्या दोगे, बट अभी तक जितना आपने काम किया है, व्हाट डू यू फील आपका अभी तक सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है, कि आप बड़े प्राउड हो कि यार भले ही मैं आगे बढ़ते रहूंगा और भी चीजें अचीव करूंगा, बट ये चीज मैंने अचीव करी है, इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हूँ। किसी क्लाइंट के साथ कोई सक्सेस या अपना खुद का पर्सनल कोई सक्सेस, बहुत खुश हो जैसे आप।
हाँ, राइट। अभी के ड्यूरेशन, हर एक अभी का प्रेजेंट लेवल में मैं अभी पहले से डे बाय डे मैं सक्सेस की तरफ मूव कर रहा होता हूँ। अभी मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा होता हूँ
जी,
कंपेयर टू पहले। जैसे जैसे मैं मूव कर रहा होता हूँ उस ड्यूरेशन में देख रहा होता हूँ कि मैं आगे मूव कर रहा हूँ, कभी भी पीछे नहीं आ रहा। और मैं वजह देखता हूँ अपना पैशन और जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसके थ्रू। तो आप जो भी चीज करते हो, जो भी चीज अगर आप करते हो फुल डेडिकेशन के साथ करोगे तो वो आपको अच्छा चीज ही देगा हमेशा, हर एक चीज में। मेरे पास अभी क्लाइंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव क्लाइंट्स हैं, बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स हैं, लाइक सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटी मैं ट्रेनर हो गया हूँ।
अरे वाह,
सेलिब्रिटी को मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ और काफी खुश है मैंने कि वो काफी खुश है। और एक क्लाइंट हमारे पास सालों साल से हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो ट्रेनिंग है वो वर्थलेस है, वो बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से मैं दे रहा होता हूँ, मैं बहुत ही फ्री होके देता हूँ। जो भी चीज किसी बॉडी को अगर हमें बनाना है तो मैं देखता हूँ कि क्या चाहिए उसमें, बस ये नहीं मुझे चाहिए कि मुझे आज, मैं ये नहीं करके जाता हूँ कि मुझे इतना चीज ये कराना है। नहीं, सबका अलग अलग सिचुएशन होता है, हर एक दिन आपका सोच अलग होता है, आपका इमोशन लेवल, कभी आप काम से आते हो आपका कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, हमें हमेशा अप लेके करना, अप जाना है। तो जाता हूँ, देखता हूँ, आपको देखता हूँ और अब मैं ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता हूँ। और ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग उनके लिए खास होता है, इस तरह से मेरा जर्नी होता है हमेशा, हर एक क्लाइंट्स के लिए।
हर आदमी के लिए आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग कराते हो, मतलब आप उसका लेवल देखते हुए और उसका स्टेटस देखते हुए कि कितना वो झेल सकता है।
राइट, वो तो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में पता चल जाता है।
अंडरस्टूड सर। सर अपने एक्सपीरियंस से आप बता सकते हो कि जब आप किसी नॉर्मल आदमी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हो, कि आप यूजुअली लोगों को देखते हो जिम वगैरह या जो भी पार्क में, सबसे बड़ी मिस्टेक्स आपके हिसाब से लोग क्या करते हैं फिटनेस और ट्रेनिंग के नाम पे, जब बार बार देखते हो तंग हो जाते हैं यार कि भाई ये मत करा करो।
देखो, पहले अगर मैं बाहर लोगों को देखता हूँ तो ये पहले फील करता हूँ चलो ये बाहर तो आ रहा है, ट्रेनिंग करना ना बहुत ही बोरिंग लगता है। क्यों? जिम के अंदर ट्रेनिंग करना बहुत ही अलग लगता है, एसी के अंदर ट्रेनिंग करना बहुत ही अनकंफर्ट में फील कर रहा होता हूँ, क्योंकि आप बाहर जितना फ्री फील करोगे, जितना ऑक्सीजन आपके बॉडी में आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, पॉजिटिवनेस आप फील कर पाओगे, ग्रास पे आप जितना खेलोगे, ग्रास पे या बाहर। तो ये होता है, कुछ कुछ मिस्टेक करते हैं पॉस्चर की वजह से, कुछ कुछ प्रॉब्लम क्या होता है, लोग डायरेक्ट फाइनल करना चाहता है कुछ भी चीज़। अगर किसी को हैंडसेन कर, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, या लोग बाहर आते हैं देखते हैं हैंडसेन कर रहा है लोग, तो हैंडसेन करना स्टार्ट कर देता है, ये रॉन्ग वे है।
अच्छा
उसका जर्नी, किस हर एक का जर्नी एक अलग अलग होता है, समझ रहे हो? सबका जर्नी, हैंसन कर रहा है लोग क्यों कर रहा है, कितना उसने उसके बारे में सोचा और क्या क्या किया, किस लेवल पे गया और वो हैंसन कर रहा होता है वो जर्... और वही चीज क्या होता है, लोग नहीं समझता है, हैंसन करना स्टार्ट करता है, फॉल हो जाता है, फिर डिमोटिवेट हो जाता है, नहीं यार मैं कभी हैंसन कर ही नहीं पाऊंगा।
तो
डिमोटिवेट मत, उसके बारे में आप सोचो, हैंसन क्यों कर रहा होता है, कहाँ पे ले। तो बेसिक स्टेप्स को करना बहुत ही जरूरी है, बेसिक स्टेप्स पे पोस्चर पे फोकस करना। सो किसी को देख के मान लीजिए, खुद को आप देखो, खुद से कंपेयर कीजिए तो आप हमेशा खुश रहोगे। तो मैं हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, खुश होने के लिए ना, आप खुश रहोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा, तो खुश रहिए आपका प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा होगा। खुद से कंपेयर कीजिए, कभी भी दूसरों को मत देखिए, दूसरों को दूसरों से मोटिवेट होइए कि चलो ये चीज मुझे करना है, तो मुझे उसके लिए ना किसी से बात करके नॉलेज गेन करना है कि कैसे ये चीज होगा। सो इंजुरी नहीं, अगर एक बार इंजुरी हो जाएगा ना उसको सालों लग जाएगा फील होने में, डिपेंड करता है कि कैसा इंजुरी है। तो कुछ कुछ चीज में ऐसा होता है, कुछ कुछ मोमेंट ऐसा होता है जो जस्ट आप ट्राई करते हो गिर जाते हो, प्रॉब्लम हो जाएगा, मत लीजिए वो चांसेस। हाँ आप एक्सरसाइज, आप पार्क जाते हो आप खुश होने के लिए, एक्सरसाइज हम करते हैं खुश होने के लिए, बॉडी को रिस्पेक्ट कीजिए, वो भी आपको रिस्पेक्ट करेगा।
इट्स लाइक कि सर होता है ना कि आप एक लेवल में हो, अब आपको एक्सरसाइज कर रहे हो, दूसरा बंदा आता है, उसने आप ना आपका एक्सपीरियंस है ना आपकी ट्रेनिंग है उसके पास, पर कहीं ना कहीं सर मन तो करते हैं ना कि जो आप कर रहे हो सीधा वही करने का मन करता है ना। जमीन जैसे आप उसको देखो बोलो कि नी पुशअप्स लगाओ, लेकिन आप कोई खतरनाक सा कोई वेरिएशन कर रहे हो एक हाथ का पुशअप और वगैरह वगैरह ना। तो मैं समझ सकता हूँ सर, बिगिनर आदमी का सबसे बड़ा टेम्पटेशन होता है कि एक्सपर्ट आदमी की तरह देखना, और आप कहीं ना कहीं कह रहे हो कैसे मत करो, शुरुआत से आगे बढ़ो अपने लेवल से। मैं समझता हूँ सर,
So, दूसरों को मत देखिए, खुद से कंपेयर करके उसका बेसिक स्टेप पे पहले काम करो, फिर आगे मूव हो जाएगा। आप भी कर सकते, कोई भी कर सकता है, हर एक कोई के पास अलग अलग कैपेबिलिटी होता है, अलग अलग यूनिकनेस होता है। सो सब कोई यूनिक होते हैं, सब कोई कर सकते हैं।
समझ गया सर। सर डाइट के ऊपर अब ये दूसरा बहुत बड़ा सवाल आता है ना, डाइट के ऊपर आपकी कोई स्पेसिफिक बिलीफ्स है कि आप कहते हैं यार डाइट के लिए नियम कुछ अच्छे होते हैं?
मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ डाइट के बहुत ही बड़ा अभी ये है मिथ है, मैं वीगन हूँ, वीगन मैं, हाँ सो मैं नॉन वेज नहीं खाता, डेयरी प्रोडक्ट अभी ज्यादा नहीं लेता, मैं नहीं लेता था, तो इस तरह से, और ऑयल फ्री प्लांट बेस्ड ज्यादातर मेरा होता है, प्लांट बेस्ड ही होता है और ऑयल फ्री होता है, इस तरह से होता है। लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि जितने भी प्रोटीन के चक्कर में मत पड़ो आप, प्रोटीन जो भी होता है ना, तो ये हमारे को, क्योंकि अब मैं बता प्रोटीन क्या होता है ये पहले आप जानो, तो प्रोटीन को लेने के लिए बहुत सारे चीज लेने होते हैं एक्स्ट्रा कुछ चीज, अगर प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन, बॉडी को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लेकिन प्रोटीन के चाहिए के साथ कार्ब्स भी चाहिए, जो हमें होलसम फूड में फ्रूट्स में मिल जाते हैं, खाने में मिल जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, वो घर का खाना बहुत ही अच्छा होता है, जो भी नॉर्मल पर्सन होते हैं उसके लिए घर का खाना बेस्ट है, घर का खाना खा के उसी को, उसी से आप न्यूट्रिएंट्स निकाल सकते हैं।
सर जो कई लोग कहते हैं, और मैंने सर एक्चुअली इस बारे में जो थोड़ा बहुत सुना है ना लोगों से, कई लोग कहेंगे जैसे अगर आप किसी नॉन वेजिटेरियन आदमी को बोलते हो तो नॉन वेज आदमी हमेशा कहता है कि नॉन वेज प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, और जो वीगन है मेरे हिसाब से लोग हमेशा आपको आके ये तो कहते होंगे ना कि सर प्रोटीन इसमें कम है, कि फ्रूट्स में इतना प्रोटीन नहीं होता, वेजिटेबल में इतना प्रोटीन नहीं होता, आप उनको सर क्या बोलते हो मतलब?
मैं जो जानता हूं ना, मैं उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फील करता हूं।
मैं समझ गया सर।
हाँ मैं बता, कुछ भी चीज अगर मैं करता हूँ ना उसको मैं पहले खुद पे बहुत ज्यादा बहुत सालों तक अप्लाई करता हूँ बस।
जी जी जी।
मैं जब मैं भी बहुत पहले 2013 में ही मैं नॉन वेज खाता था, उसके बाद मैं जस्ट उसको हटा, मैं जब छोड़ा तो मैं बहुत ही लाइट फील कर रहा था।
समझ गया सर।
तो बहुत ही लाइट, जो जितना भी जो प्लांट बेस्ड फूड अगर आप ले रहे होते हो तो वो आपको लाइट फील कराएगा, डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई भी ये होता है जो भी एनिमल प्रोडक्ट है उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ही टाइम लगता है।
हाँ सर।
32 hours लग जाता है उसको डाइजेस्ट होने, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा फिर आप खा रहे होते हो, फिर खा रहे होते हो, ऐसा ऐसा, तो ये रॉन्ग है।
पेट सर भारी हो जाता है नॉनवेज खाके, काफी सर हैवी हो जाता है पेट काफी, ये तो होता है सर।
तो ये काफी बहुत ही बड़ा लिस्ट है, तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ बेस्ट फूड है। सुबह जब आप उठते हो तो क्यों होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर्स हैं इसके इसके बारे में। सो जब आप सुबह उठते हो तो फ्रूट्स बहुत ही अच्छा मस्ट है, फ्रूट्स लीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करने के लिए जाते हो तो पहले वार्म अप करते हो, राइट?
यस सर।
12 o'clock तक क्लींसिंग हो रहा होता है बॉडी का, तो उसमें फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स की मात्रा है वो खाना बहुत जरूरी है, जितने फ्रूट्स हो गया, सीजनल लोकल, सीजनल हो और लोकल, लोकल फ्रूट, जैसे अभी सेब का एप्पल का टाइम नहीं है, खत्म हो गया तो फिर आप एप्पल खा रहे हो, ये रॉन्ग है, क्योंकि काफी सारे केमिकल्स होते हैं। तो फ्रूट्स हो गया, उसके साथ फ्रूट्स का ही मिक्स करके स्मूदी बना लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, अगर कहीं पे आप बाहर जा रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे हो तो ड्राई फ्रूट्स कैरी कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है सुबह का मॉर्निंग टिल 12 o'clock। फिर उसके बाद जो भी होता है आप जो मील लेते हो, लंच लेते हो, उसके बाद वेजिटेबल जूस अगर ले रहे होते हो, कोई भी वेजिटेबल्स का, कुकम्बर हो गया, टमेटो हो गया, उसका जूस ले लीजिए, या और सैलेड तो रखो ही अपने लंच में या मील में, कोई भी मील में। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट स्नैक्स करो, ये जितने भी इंडियन हमारे हमारा दिया है ना डाइट प्लान, तो वो बेस्ट है इंडियन के लिए, इंडियन डाइट प्लान बहुत ही अच्छा।
मैं समझ गया सर,
शुरू से आया है, घर का खाना खाइए ज्यादा।
और डिनर के टाइम क्या रेकमेंड करते हो सर? डिनर के टाइम
डिनर लाइट होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, जैसे जल्दी आप खाना खाने का कोशिश कीजिए, जितने भी जानवर होते हैं वो 10 बजे नहीं खाता है, आप देखते हो। सूर्य सूर्य डूबते ही आप खा सकते हो, या सूर्य के डूबने के पहले अगर आप खा रहे होते हो वो बेस्ट है, मीन्स टिल 6 o'clock अगर आप खा रहे होते हैं, या मैक्स मैक्स हो गया 8 o'clock से पहले खा रहे होते, तो वेजिटेबल बॉइल वेजिटेबल आप खा सकते हो, वेजिटेबल सिर्फ खा सकते हो, वो बेस्ट है, सैलेड खा सकते हो, सूप ले सकते हो, सो बेस्ट है, लाइट खाना खाइए, और रात में सोने वक्त आप कोई भी नट्स का आप मिल्क पी सकते हो, ले सकते हो, नट मिल्क, आमंड हो गया, कैश्यू हो गया, इसका कोई भी किसी भी एक नट कभी मिक्स करके नहीं।
समझ गया सर। तो मॉर्निंग में उठते फ्रूट्स, आप लंच में खाते हो अपना हेवीएस्ट मील दिन का, डिनर आप करते हो लाइट, जो सन के ढलने से पहले खटाखट खा लो, मतलब अगर 6:30 को सूरज डूब रहा है तब
नहीं खाओ, धीरे धीरे खाओ, जवान जवान
जी जी।
तो अगर घटाघट खाओगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में आप खाओगे, तो ज्यादा च्यू करोगे तो वो कम अमाउंट में खाओगे, वो बहुत ज्यादा हमें न्यूट्रिएंट्स बॉडी को
देगा। सर ये तो फैट लॉस के लिए बहुत अच्छी डाइट लग रही है सर, मतलब पतला लीन रहने के लिए,
हरेक चीज के लिए बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट है, जिसको फैट लॉस करना है तो फैट लॉस हो जाएगा, बैलेंस रखेगा बॉडी को
जी सर,
ज्यादा अगर चाहिए वेट चाहिए तो वेट भी आ जाएगा, अलग 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 तरह से आप खाना खा रहे हो, इसी में काफी सारे प्रोडक्ट हैं, इसमें काफी सारे नट्स में चीज है जो कि आपको देगा, वो नट्स में नट्स ही दे पाएगा बॉडी को, सो ये
हाई न्यूट्रिशन डाइट सर, सात्विक, काफी सात्विक डाइट लग रही है सर, ये क्लीन डाइट जिसे हम कहते हैं,
क्लीन, अगर आप प्रॉपर इस चीज को फॉलो करेंगे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती, कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत नहीं होगा, आप लाइट फील करोगे, मींस वही है दूसरे के, हाँ यही है कि दूसरे की बातों में मत आए, अपने बॉडी को समझने का कोशिश करो बस, हर एक चीज में, इवन डाइट हो, इवन एक्सरसाइज हो, हर एक चीज में लाइफ में आप मूव कर रहे हो।
समझ गए सर, दिस इज द टाइप ऑफ डाइट सर जो आई थिंक हमारे योगा में भी रेकमेंड करते हैं, योग में भी कहते हैं कि सात्विक और क्लीन डाइट होनी चाहिए आदमी की,
राइट?
आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन इंस्पिरेशन रहे, क्या और कोई भी है जिनको आप देख के इंस्पायर होते हो, क्या आप कहते हो कि हाँ यार
राइट, हाँ मेरा बहुत इंस्पिरेशन, हाँ राइट, सो बचपन से मेरी मोम मेरे गुंजन सर के बारे में बता दे, क्योंकि वो हम बहुत ही डेडिकेटेड थे बचपन से, वो आगे मूव कर रहे होते थे, अच्छे पर्सन थे, अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे, उनका स्टडी उनका जर्नी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है रहता है। तो उसके बारे में उस तो अच्छे अच्छे पर्सन के बारे में जो भी मेरे टीचर हुआ करते वो मेरे मुझे मोटिवेट करते थे हमेशा, टीचर होते थे राइट, जो भी स्कूल में या कॉलेज में मैं गया तो मेरा टीचर से बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता था, वो मुझे अलग अलग तरीके से सपोर्ट करता था स्पोर्ट्स में ज़्यादातर, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी था, तो कोई भी स्पोर्ट्स अगर मैं खेलता था तो उसमें मैं बहुत ही अच्छा करता था बिकॉज ऑफ फिटनेस, मैं जस्ट मैं फिटनेस कोई भी स्पोर्ट्स अगर क्लास भी नहीं है तो मैं जस्ट रनिंग के लिए जाता था, मुझे काफ़ी सारे चीज ऑब्स्टिकल के साथ खेलता था, पार्कोर करता था, बार्स के साथ खेलता था, कैलिस्थेनिक्स करता था, योगा करता था, खुद से करता था, एक्सप्लोर करता था, कुछ चीज देखता था और मैं ट्राई करता था, ट्राई करते करते मुझे एक अच्छा थॉट्स आता था और लोगों के साथ सिखाना स्टार्ट करता था, मीन्स अपने जो जो भी फ्रेंड्स होते थे उसी समय से मैं सिखा रहा होता था कुछ कुछ चीज साथ, इस तरह से होता रहा था, जो भी चीज हमारे पास नॉलेज आता था मैं शेयर करता था एक दूसरे से। तो ये हर एक कोई बहुत जहाँ पे भी गया बहुत सारे लोग हमारा मुझे इंस्पायर करता था और मेरा मोटिवेटर हुआ करता था, मेरे टीचर ज्यादातर टीचर, जो जितने भी टीचर हैं मेरे जर्नी में।
समझता हूँ सर। अब सर ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं अपने हमेशा जब मैं किसी गेस्ट को लाता हूँ मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन पूछना उन गेस्ट से। सो आप एक टेबल में बैठे हो और टेबल में आप खा रहे हो और आपके सामने तीन लोग बैठे आपके साथ टेबल में खाने के लिए खाना, ये तीन लोग दुनिया में कोई भी तीन लोग हो सकते हैं, रियल, काल्पनिक, नकली, असली, पुराने नए, कोई भी हो सकते हैं, आपको मौका मिले तीन लोगों के साथ बैठ के खाना खाने का, तो आप इन कौन तीन लोग अपने साथ पसंद करोगे और क्यों?
कौन लोग को पसंद करोगे
मतलब सर जैसे अगर मैं बैठा हूं और मेरे पास एक टेबल है और टेबल में तीन लोग है मेरे सामने और बचपन में मैं सुपरमैन की कॉमिक पढ़ता था तो एक आदमी मैंने कहा कि मैं सुपरमैन से मिलना जरूर पसंद करूंगा, हो सकता है मैं गांधी जी, अगर मैं गांधी जी को रिस्पेक्ट करता हूँ मैंने कहा हाँ जी मैं गांधी जी से मिलना पसंद करूंगा, तो आपके ऐसे कौन से तीन लोग है जिनके साथ आपको मौका मिले तो उनके साथ आप डिनर करना चाहो, और जरूरी नहीं कि वो जिंदा लोग है काल्पनिक लोग भी हो सकते हैं, आप किन तीन लोगों के साथ बैठ के करना चाहोगे, आपके सुपर पावर है आप कर सकते हो तो आप किन तीन लोगों को चुनोगे और क्यों?
ऑफ कोर्स जो रियल होगा उसी को चुनूंगा।
हाँ जी जी, पर अगर आप एक काल्पनिक बंदे को भी चुन सकते हो आप चाहते हो, एक ऐसा आदमी जो मर चुका है उसको भी चुन सकते हो, मतलब आपको मिलने का मौका मिला है एक तरीके से, आप किसी से भी मिल सकते हो जिससे आप मिलना चाहते हो, तो आप किससे मिलना पसंद करोगे?
किसे मीन्स पर्सन का नाम बताऊं?
जी जी, पर्सन का नाम और आप उसी पर्सन को क्यों चुनते हो?
राइट, गुंजन सर।
ठीक है चलिए, गुंजन सर पर ये थोड़ी चीटिंग है बिकॉज आप उनसे कभी भी मिल सकते हो, उनको छोड़ के ऐसा और कौन कौन है?
ओके, गुंजन सर है और मेरा फ्रेंड है, एक मेरा फ्रेंड है रवि,
रवि
विकास, उससे मिल जाऊंगा, वो अभी विकास वो अभी ये लेफ्टिनेंट है, ऑफिसर है इसमें एयरफोर्स का।
वाह, और आपको रवि जी के बारे में, आपने रवि जी को क्यों चुना, क्योंकि वो आपके पुराने दोस्त थे इसीलिए?
मैं रवि और विकास दोनों का नाम लिया क्योंकि रवि और विकास हम तीन लोग थे जो बहुत ही क्लोज हुआ करते थे अपने बीटेक लाइफ में, इंजीनियरिंग, तो हम तीनों लोग एक दूसरे का मोटिवेटर हुआ करते थे, एक दूसरे से मोटिवेट करते थे, तीनों अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज, एक ही चीज स्पोर्ट ही बैकग्राउंड था जो कि बहुत ही अच्छा रहा, जर्नी बहुत ही अच्छा था।
समझ गए सर। किससे सर, एक मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी आपको ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मुझे पता है बिजी आदमी हो आप, आपके पास अपना भी काम है, सो दिस इज जस्ट वन मोर। आप अगर आप एक दिन के लिए, आपको प्राइम मिनिस्टर की पावर मिलती और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते और आपके पास एक लॉ पास करते कि सारे स्कूलों में सारे बच्चों के जो स्कूल है आप एक कोई भी एक चीज आप कंपलसरी कर सकते हो कि छोटे बच्चों को स्कूल में ये चीज सिखाना आवश्यक है, कंपलसरी है, तो आप क्या चुनते और क्यों? छोटे बच्चों को ये सिखाना ही सिखाते हैं।
मैं उसमें चुनूंगा फिटनेस क्लास। फिटनेस बहुत ही नेसेसरी हो वहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे आ रहे होते हैं वो हमारे जो वही तो भविष्य है।
जी सर,
तो फिटनेस मैं बहुत ही नेसेसरी वहाँ पे प्रोवाइड करना कराना चाहूंगा।
समझ गए सर, आप फिटनेस कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन, हर बच्चे को फिटनेस की क्लास करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर। किसने सर, थैंक यू सो मच आज के शो में आने के लिए, बड़ा yes, अच्छा लगा। आपका माइंडसेट सिंपल पर बहुत सीधा और बहुत सही, और ऐसा चीज जिसको अगर लोग थोड़ा आपकी लाइफ में फॉलो करें ना, आपका स्ट्रेट रास्ता जो है, तो क्या पता हमारे पास थोड़े और ढंग के एथलीट, थोड़े और ढंग के स्टूडेंट्स, और या थोड़ा हम लोग भी सुधर जाए, हमारी भी फिटनेस बढ़िया हो जाए फिर। किसने सर, अगर लोग आपको जानना चाहे, आपको बारे में और पता करना चाहे, तो आपको कहाँ ढूंढ सकते
हैं? मैं इंस्टाग्राम पे होता हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल होता है, या कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 9022408286।
ठीक है सर, थैंक यू। और
मुंबई में मेरा काफी सारे चीज, रनिंग क्लासेस, हर एक चीज बोले।
ठीक, तो गाइज ये हमारे पहले पॉडकास्ट होस्ट है जिन्हें अपना नंबर भी पॉडकास्ट में दे दिया है, तो प्लीज इस नंबर को नोट डाउन करिए और सर को शाम को तंग करिए उनसे टाइट एडवाइस लेके। किसलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी तो थोड़ा कोरोना की वजह से अटके हुए, जब कोरोना खत्म होता है तो मुंबई में ट्रिप लगाता हूँ पर्सनली, आपके साथ भी फिर ट्रेन करने आऊंगा, और आई वुड लव टू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।
Hey guys, and welcome to the podcast. On today's episode, we are going to talk with accomplished athlete, Sanjana George. Sanjana is an OCR runner, which all of you guys who don't know is obstacle course running, something quite crazy, to be honest. It's similar to kind of those courses where you run those military courses where you go under barbed wire, you climb ropes, and you kind of go through obstacles. It's extremely challenging, and she's one of the few athletes of our country who actually competes outside the nation. So I think that's really cool. She's also a very high level mixed martial artist, and it was really nice having her on the show. It's really nice to see women who kind of go for these things and who keep themselves strong and fit and powerful. Two caveats I want to kind of say though before we begin. One is the net connection between me and Sanjana was not the best, so there are times where the voice goes a little clunky, you'll hear me a bit confused because you know, the audio misses a few times, so it's not a big deal, but just keep it in mind, keep that in mind when you're listening to the episode. And second thing, which is I'm stating it and I'm scared I might be shooting myself in the foot for people who wouldn't have noticed this, for me to kind of point it out, but because of some stupidity from my side, basically I deleted it. There was some scheduling issues between me and Sanjana, so I accidentally deleted the questions I wanted to ask her. And being the complete unprofessional that I am, I went into the podcast without any questions, forgetting all of the questions I thought to ask her, and this podcast went a bit more freestyle than I wanted to. I think you'll observe me being a bit confused here and there, just forgetting the effing questions I wanted to ask. I hope I didn't kind of make it too awkward for Sanjana. But I'm still grateful. This is a fun podcast, and enjoy it.